लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। पवन ये खिला चमन ये दिन और ये दिन मान मिला, ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण
आओ। ओम शांति, ओम शांति। हम सभी का सौभाग्य, हमारे बीच वो भगवान का नूर उपस्थित है जो फरिश्ता से आभा लिए हुए अपने अंदर और अपने तपस्वी जीवन प्रखर व्यक्तित्व के आधार पर विश्व भर में लाखों में जीवन में आध्यात्मिकता सकारात्मकता का ऊर्जा प्रवाह फैलाने वाली आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी, ब्रह्मा कुमारी के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका एवं यूरोपियन मध्य पूर्वी देशों में भी आप ब्रह्मा कुमारी की निर्देशिका हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी आप संस्था की प्रतिनिधि हैं, बाल्यकाल से ही आप संस्था से जुड़ी हुई हैं, आध्यात्म को जीवन में समझने का शुरू से प्रयास किया, 60 वर्षों से भी अधिक ज्यादा समय से आप जीवन में जीवन को समर्पित रूप से विश्व की निस्वार्थ सेवा करती रही हैं। दादी जानकी जी, जो कि 2019 तक हमारे बीच रही, उनके साथ मिलकर आपने विदेशों में ब्रह्मा कुमारीज का प्रतिनिधित्व किया, साथ ही यूं कहें विदेशों में विस्तार वो भूमिका भी आपने बहुत बखूबी से निभाई और आज हमारे मध्य मैं आपके लिए इतना सही कहना चाहती हूं, यज्ञ के इतिहास को आप नित नूतन रंग देती, यज्ञ के इतिहास को नित नूतन रंग दें, वाणी है आपके पास भगवान की, वाणी है भगवान की, बस मंथन करके परस दें, ऐसी महान विभूति हमारे मध्य है और हम आपका अभिनंदन करते हैं। सभा से अनुरोध है, तालियों के माध्यम से हम आदरणीय दीदी जी का अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
ओम शांति। बहन जी ने तो बहुत विस्तार से बातें बताई, परंतु ये मैं मानेंगी कि सचमुच जैसे गीत में था कि ये जीवन एक परमात्मा के प्यार का वरदान है, वो ही सही बात है। और आज हम टॉपिक को सोचते हैं कि जो हम चाहते हैं कि स्वस्थ संसार हो, उसमें मुख्य बात आती है संबंधों की। संबंध के आधार से ही किसकी जीवन बनती, संबंध के आधार से ही ये विश्व आज जिस तरह से है ऐसे है। और आगे यदि हम कुछ और नया संसार चाहते हैं तो उसका आधार भी एक संबंध ही कहेंगे। जब आध्यात्मिकता की चर्चा होती तो उसमें हम कहेंगे कि मुख्य तीन बातें आती, एक तो आत्मा की पहचान, दूसरा परमात्मा की पहचान और तीसरा कर्म फिलॉसफी की पहचान। भारत के अंदर इन तीन बातों की खोज सदियों से रही है, सदियां तो क्या मिलेनिया कहेंगे, और विश्व भर में हाँ ये खोज रही है, परंतु इतने समय की खोज नहीं जितना कि भारत के अंदर। क्यों? क्योंकि हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनि इन बातों की खोज करते थे, और अब जो समय चल रहा है हम मानते हैं कि वो एक विशेष ऐसा समय है जबकि परमात्मा खुद ही अति धर्म गिलाने के समय अवतरित होकर सत्य ज्ञान हमें देते हैं, जिस सत्य ज्ञान के आधार पर अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना हो रही है। तो उसमें जब आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जुटता जिसको हम कहेंगे न सिर्फ योग परंतु राजयोग, सर्वश्रेष्ठ योग। योग तो किसी के साथ भी हो सकता, जहां पर भी बुद्धि जाती उसको हम कहेंगे कि वहां योग जुड़ा हुआ है। परंतु जब परमात्मा के साथ हमारा योग जुड़ता तो उसमें हमें ज्ञान की पहचान और उस ज्ञान के आधार पर किस तरह से अपने जीवन में गुणों की धारणा हो सकती और साथ ही साथ परमात्मा द्वारा शक्ति लेकर के कैसे हम जो हम चाहते हैं कि अपने जीवन में कुछ परिवर्तन हो वो हमारा सहज ही संभव होता। जब हम चाहते हैं कि स्वस्थ संसार हो उसमें पहले खुद के साथ मेरा संबंध क्या है, अन्य आत्माओं के साथ मेरा संबंध क्या है, सब जो भी इस संसार में है, पशु है पंछी है उनों के साथ मेरा संबंध क्या है, और चौथी बात प्रकृति माँ अथवा नेचर के साथ हमारा क्या संबंध है। तो यदि हम आज मानव की स्थिति चाहे प्लैनेट की स्थिति को देखते हैं, आप खुद ही सोचो कि संबंध क्या हो चुके हैं। और परमात्मा हमें बहुत सुंदर रीति से सहज रीति से बताते हैं कि इन सब बातों का परिवर्तन अब किस तरह से हम कर सकते। राजयोग को कर्म योग भी कहा जाता, क्यों? क्योंकि जब कर्मों में परिवर्तन आता तो ही फिर संबंध में भी परिवर्तन आता। तो यदि हम पहले बात देखें कि मेरा खुद के साथ क्या संबंध है, तो आप मानेंगे कि आज जितना मानसिक तनाव है या आज जितना मेंटल इल हेल्थ की बीमारियां फैली हुई है, आज के इतिहास तक उससे पूर्व कभी ऐसे समय नहीं रहा। जब मैं अमेरिका में फर्स्ट टाइम गई थी 70s में, और उस समय मुझे पता चला कि एक बहन ने बताया कि मैं एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैंने पूछा कि आपका उसमें क्या कारोबार चलता, तो उसने कहा कि मैं स्कूलों में जा करके बच्चों को कैसे अपना मन का संतुलन हो मैं उन्हों को वो बातें समझाती हूँ। तो मुझे उस समय आश्चर्य लगा कि बच्चों को भी इतनी तक की आवश्यकता है कि साइकोलॉजिस्ट उन्हों को बैठ करके समझाए। और उन दिनों में तो भारत में तो साइकोलॉजिस्ट के पास तो मुश्किल से कोई जाते थे, और आज भी कुछ स्टिग्मा कहेंगे, परंतु आज सभी मानेंगे कि बच्चों को भी जो मानसिक असंतुलन है, या आज इंग्लैंड में भी छोटे बच्चे भी कहेंगे कि मैं अपने मन को नहीं संभाल सकता हूँ, रोलर कोस्टर चल रहा है, और बच्चे तो क्या, परंतु हर एक एज ग्रुप में हम देखते हैं कि ये सब जो खुद के साथ संबंध है उसकी जानकारी है ही नहीं। इस कारण से मन को किस तरह से शांति से प्यार से धीरज से संभाला जा सकता, किसी के पास वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं। तो परमात्मा के ज्ञान द्वारा हमें एक मुख्य बात की पहचान होती कि दो बातें जो आत्मा के अंदर है, जब तक उन दो बातों का आपस में मेल नहीं हो पाता तब तक कुछ न कुछ उथल पाथल होती ही रहेंगे, जिसको हम कहेंगे इमोशनल रोलर कोस्टर। आपने खुद अपने जीवन में शायद इस बात का कब अनुभव किया होगा कि कभी कभी इमोशनल स्टॉर्म्स ऐसे आते हैं जो खुद को ही संभाला नहीं जाता, या आपने औरों के अंदर भी इस तरह से देखा होगा। परंतु बेशक कोई स्ट्रॉन्ग न भी कहें, परंतु इंटरनल वो बैलेंस हो। किस चीज का बैलेंस? विवेक मेरा क्या कह रहा, बुद्धि मेरी क्या कह रही, और हमारे इमोशंस और फीलिंग्स किस तरह से उत्पन्न हो रहे और किस दिशा से हमें ले जा रहे हैं। विवेक बता रहा है कि बहुत ऊंची स्थिति बनाए, परंतु जब इमोशनल स्टॉर्म आता, अपहीवल आता, और हाँ कभी बहुत गहरी बातें होती है जीवन में, परंतु कभी बहुत साधारण बात भी हो, और बात होंगी छोटी सी, बहुत ही साधारण, परंतु जो उसका नतीजा होता है अपने मन के संतुलन के लिए, वो हम देखते हैं कि वो मन बिल्कुल हमारा एकाग्रचित नहीं हो पाता। तो जो इमोशंस आते हैं, हम उन्हों को समझ जाएं कि संकल्प, संकल्प द्वारा हमारी फीलिंग्स और फीलिंग्स द्वारा हमारे इमोशंस। परंतु कई बार आज की परिस्थिति का हिसाब नहीं होता, परंतु पूर्व में कुछ इस तरह से ट्रॉमा आत्मा ने अनुभव किया हो, जिस कारण से आत्मा बहुत ही कमजोर हो गई हो, जैसे कि वो स्कार्स, वो वूंड्स आत्मा के अंदर समाये हुए हैं, वो अभी तक हीलिंग नहीं हो पा रही है, इस कारण से भी वो उत्पन्न होते। परंतु जब हम योग लगाते परमात्मा की सही पहचान के आधार से, कि वो एक निराकार परमात्मा ज्योति स्वरूप है, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप, जब मेरा बुद्धि का योग परम पिता परमात्मा के साथ उस प्यार के नाते से उस संबंध में जुट जाता, उससे जो हमें प्यार की शक्ति मिलती, जो इमोशंस है, वो फीलिंग्स है, चाहे वो गहरी ट्रॉमा की बातें हैं, उसकी हीलिंग शुरू हो जाती। और जैसे हमारी इमोशंस हील होते जाते हैं, आत्मा कुछ अपना संतुलन में आती है, और फिर जो हमारा विवेक भी शक्तिशाली बनता है योग के आधार से, उस शक्ति के द्वारा मन बुद्धि एक बैलेंस में आने से, विवेक ठीक प्रकार से जो हमें राय दे रहा है, दिशा दिखा रहा है, आत्मा उस पर चल पाती है। तो हमारा जो खुद के साथ संबंध होता, उसमें जब हीलिंग आ जाती, तो जो हेल्थ आत्मा की है वो हमारी बढ़ती जाती, और उससे हमारे जीवन में हमें सुख, शांति और पवित्रता की प्राप्ति होती जाती। हम कई बार सोचते हैं कि हम इस बात को ठीक करें, हम उस बात को ठीक करें, परंतु जब तक खुद को हमने ठीक नहीं किया है, हम अन्य बातों को किस आधार पर ठीक कर सकते। वैसे कहते हैं, फिजिशियन फर्स्ट हील थाई सेल्फ। तो हम हर एक चाहते हैं कि हमारी जीवन स्वस्थ हो, संबंध स्वस्थ हो, ये हमारा जो संसार है वो स्वस्थ हो। तो जब पहले हम अपने आप को परमात्मा की याद के द्वारा, परमात्मा के ज्ञान के आधार पर हम ठीक करके चलते हैं, तो फिर उस हीलिंग की शक्ति के द्वारा हम अन्य के साथ जो हम संबंध रखते हैं, उसमें भी कुछ हीलिंग आ सकती। आप देखेंगे कि जब संबंध की बात होती, जहां पर हमारे अंदर कुछ सहन शक्ति होती, कुछ समाने की शक्ति होती, कुछ सहयोग के लेन देन की शक्ति होती, तो वो हमारे सब संबंध बहुत ही सुंदर स्वस्थ रहते हैं। परंतु आज का वो समय है जब किसी को कुछ सहन करने की शक्ति ही नहीं रहती। कुछ समय पहले हम सोचते थे कि सहन शक्ति बहुत ही आवश्यक है, आजकल कई लोग मानते हैं कि हम क्यों सहन करें, क्या आवश्यकता है सहन करने की। परंतु आप देखो, सोने को भी जब आग में डाला जाता है उसका सारा एलॉय निकल आता, परंतु और भी आगे जब उस सोने को ज्वेलर अपने हाथ में लेकर के उसको मोल्ड करता है, उसको सेटिंग देता है, तो फिर एक बहुत शोभनीय एक ज्वेलरी की पीस बनती। यदि सोने के अंदर वो सहन शक्ति न होती, न उसकी प्यूरिफिकेशन होती, न उसकी कुछ और आगे शोभा होती ज्वेलरी के हिसाब से, तो ये तो बहुत एक्सटर्नल बात है। परंतु इसी प्रकार से जितना जितना हम परमात्मा की याद के शक्ति द्वारा अपने में सहन कर की शक्ति धारण करते हैं, तो जो हमारी मोल्ड होने की आदत होती वो हम मोल्ड सहज ही कर सकते। नहीं तो छोटी छोटी बातों में भी मैंने ये कहा आपको ये मानना होगा, उसमें कुछ एडजस्टमेंट कैपेसिटी, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पाती। परंतु चाहे छोटे हो, हमारे हमजिंस हो, हमसे बड़े हो, जिस आत्मा के अंदर ये सहनशीलता होगी उसके कार्य में सफलता भी होगी। और आप देखेंगे कि एक तो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जिसमें हम मानते हैं कि जो हमारे अंदर आत्मा है हम उसको अधिक से अधिक जानते जाएं। परंतु दूसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारा अन्य आत्माओं के साथ किस प्रकार के संबंध है अथवा व्यवहार है। मैंने देखा है कि कोई समय था जबकि लोग मानते थे कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट होंगी, आईक्यू होगा, तो उसको हायर करना अच्छा होगा कोई भी कार्य के लिए, कोई भी जॉब के लिए। परंतु आजकल वो सिर्फ आईक्यू नहीं देखते हैं परंतु ईक्यू देखते हैं। यदि किस व्यक्ति को इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया हो, आईक्यू जबरदस्त हो, परंतु ईक्यू इमोशनल क्वोशेंट संबंधों की जानकारी न हो और संबंध न ठीक कर सके, तो उस व्यक्ति को हायर नहीं किया जाता। और जिस व्यक्ति को इंटेलिजेंस क्वोशेंट बेशक थोड़ा कम हो परंतु ईक्यू हाई हो, उसी को ही लेंगे, क्योंकि कहेंगे कि उसके द्वारा जो कार्य होगा वो सफल होगा। तो ये रियलिटी है। पहले तो खुद को हम जाने, अच्छी तरह से हम अंतर्मुखी होकर के अंदर की यात्रा करके हम अंदर का अच्छी तरह से बैलेंस रख सके, फिर जो अन्य आत्माओं के साथ संबंध है उसमें सहज ही सहयोग का लेना और देना संभव होता। आप देखेंगे कि आजकल टीम वर्क को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता, और सही बात है। आप सोचो कि यहाँ का कार्य जिस तरह से चल रहा है, कितनी आत्माएं आपस में सहयोग का लेन देन करके कार्य कर रही है। एक व्यक्ति, दस व्यक्ति की बात नहीं है, हजारें आपस में सेवा करने के लिए तैयार होते, और सेवा करने पर एक दो के साथ वो सहयोग का लेन देन करके बहुत प्यार से कार्य, शांति से कार्य चल सकता। छोटा कार्य भी बड़ा मुश्किल होता यदि सहयोग की लेन देन की शक्ति नहीं, और बड़ा कार्य तो संभव ही नहीं होता। आप लोगों ने शायद हमारा भंडारा देखा होगा या नहीं देखा होगा, परंतु यदि नहीं देखा है तो आप जरूर अपना जो गाइड है आपके साथ, जो भी टीचर है, आप उन्हों को ये रिक्वेस्ट करना कि वहां पर आपको कभी लेके जाए जब कारोबार चालू हो। क्यों कहती, क्योंकि 30,000 की संख्या का भी भोजन इस भंडारे में, अभी तो संख्या कम ही है क्योंकि कॉन्फ्रेंस का कारोबार है, परंतु जब हमारा स्पिरिचुअल गैदरिंग्स होते हैं वर्ष में करीब 10 या 12 टाइम्स होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक, तो उस समय 25,000 कम से कम लोग यहाँ होते। 25,000 का भोजन 90 मिनट्स में तैयार हो जाता, 3 बारी दिन में। ये कैसे होता? हाँ, टेक्नोलॉजी का भी उसमें कार्य है, परंतु मानव का एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट का लेन देन और रिस्पेक्ट की लेन देन के आधार पर मुझे लगता है कि जो सहयोग की शक्ति होती, सहज सहज कारोबार चलती। तो ये तो एक्सटर्नल बातें, परंतु इंटरनल बात जब स्वयं को अपने लिए स्वमान है। एक आज के संसार में एक मुख्य बीमारी ये भी बहुत जबरदस्त है, इनसिक्योरिटी अथवा डर अथवा स्वमान की कमी। जब स्वमान की कमी होती तो फिर दूसरे के प्रति हम उन्हों को रिस्पेक्ट देवें, उन्हों को मान से हम संबंध रखें, वो संभव नहीं होता, क्योंकि या तो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होंगी या तो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होंगी। परंतु स्वयं की पहचान, और जब हमारा फीलिंग्स और इमोशंस और विवेक एक लेवल पर बन जाता, अलाइनमेंट हो जाती, तो जो अपने अंदर के वैल्यूज है, अंदर के गुण है, वो अपने आप ही प्रकट होते हैं। क्योंकि हर आत्मा के अंदर गुण आवश्यक है, अवश्य ही है। क्यों? क्योंकि हर आत्मा है परमात्मा की संतान। परमात्मा के संतान के नाते से जो परमात्मा के गुण, वो आत्मा के अंदर भी वही गुण। परंतु हम खुद को भूले हुए हैं, उसको भूले हुए हैं, तो अपने गुणों से हम बहुत दूर चले गए। तो जब अंदर की बातों को हम जानते हैं और उसको ठीक करते हैं, तो फिर जो हमारे ओरिजिनल क्वालिटीज है आत्मा की, ओरिजिनल क्वालिटीज आत्मा की कौन सी है? शांति, प्रेम, सत्यता, पवित्रता और खुशी। ये 5 है आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज। तो जब हम इन क्वालिटीज का अनुभव करते हैं परमात्मा के साथ योग लगाने से, न सिर्फ परमात्मा सागर हमें वो गुण देते हैं, हाँ परमात्मा के द्वारा हमें उसका अनुभव होता, प्राप्ति होती, परंतु जो अंदर में वो छिपे हुए थे वो फिर से वो प्रकट होते हैं, हम उन्हों को अनुभव करते हैं। तो उसमें हमारा स्व का मान, स्वमान, हम उसमें सहज ही दिख सकते। हमें ये आवश्यकता नहीं होती कि कोई हमें मान देवे, हमें वो भूख अथवा वो इच्छा नहीं होती, क्योंकि खुद की अपनी डिग्निटी है, खुद हम उस अपनी डिग्निटी में स्थिर है। तो हमें जो अंदर है वो हम अन्य आत्माओं को भी हम दे सकते हैं, हमें कभी भी उसकी कोई मांगने की आवश्यकता नहीं होती, या संकल्प भी नहीं होता कि, डिजायर भी नहीं होती कि हमें कोई और कुछ देवे। तो जब स्वमान है तो हमारी जीवन खुद के लिए बहुत ही सफल होती, सुंदर रहती। और जब हम अन्य आत्माओं को मान देते हैं तो जो संबंध है, कुछ भी किसी भी प्रकार का संबंध पहले बिगड़ा हुआ हो, वो फिर से वो ठीक हो जाता। तो स्वमान देना, सम्मान देना, स्वमान में रहना, ये बहुत एक सीक्रेट है, सुंदर सीक्रेट, जो समझ करके उस आधार पर हम हर प्रकार का संबंध बहुत सुंदर बना सकते हैं। और फिर तीसरी बात, आज मानव की जब हिंसक वृत्ति हो चुकी है हर प्रकार से, चाहे लोभ, चाहे मोह, चाहे अहंकार, चाहे क्रोध, इन सब बातों में कुछ न कुछ हिंसा समाई हुई है। और जब अहिंसा का डेफिनेशन हम सोचते हैं, उसमें न सिर्फ हम कहेंगे नॉन वायलेंस, परंतु उसका बहुत सुंदर डेफिनेशन आता है डू नो हार्म, किसी भी पशु पंछी को दुख न देना, मानव को तो दुख न देना ये तो सर्वप्रथम है, खुद को न दुख देना ये भी बहुत ही आवश्यक है। सेल्फ हार्म की जो बीमारी है वो भी आजकल आप जानते हैं, चाहे ड्रग्स के द्वारा, चाहे अल्कोहल के द्वारा, इत्यादि इत्यादि अनेक बातें, परंतु खुद के लिए भी अहिंसा, अन्य आत्माओं के लिए भी अहिंसक वृत्ति, परंतु पशु पंछी के लिए भी हमारी वो अहिंसक वृत्ति रहे। तो ये सब जो परमात्मा की शक्ति द्वारा जीवन में परिवर्तन आता, उस आधार पर आप सोचो कि जब हमारे मन में हर मानव के लिए, पशु पंछी के लिए भी एक प्रेम जागृत होता, तो आप सोचो किस तरह का स्वस्थ समाज बन सकता। और संभव है, बिल्कुल संभव है। कहानियां आप लोग सुनते होंगे कि ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, परंतु कोई भी पशु पंछी उनको कुछ हार्म नहीं करता था। यहाँ पर अभी तो सारा अपना जो सेटअप है वो एक टाउनशिप की तरह से है, परंतु जब ये स्थान शुरू शुरू में लिया गया था 80s में, तो उस समय एक पेड़ था, बड़ा पेड़ बनियन ट्री, जो आज तक भी है, जहाँ पर नीचे से थल्ला बना हुआ है जहाँ बैठ सकते, और एक छोटी सी झोपड़ी थी जहाँ अभी दादीज कॉटेज है, वो एक बहुत सिंपल एक छोटी सी झोपड़ी, और जहाँ टेलीफोन एक्सचेंज है वो छोटा सा ही, वो भी झोपड़ी के समान ही था। तो वहां पर अपनी दादी जी दादी प्रकाश मणि रहते थे कब कब, तो पूरा था ही जंगल। तो उस समय की बात है जो दादी का मैंने खुद देखा था और अनुभव सुना था, तो दादी बताती थी कि जब वो बाथरूम में गई तो एक सांप था वहां, तो उसको कोई से कई जानते होंगे, शायद कई नहीं भी जानते हो, इसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। बीच बीच में इस ट्रैफिक को, मन की जो ट्रैफिक है उसको शांत करके परमात्मा के याद में अपनी बुद्धि को एकाग्र करना, उससे जीवन में अनेक प्रकार की प्राप्ति होती। तो यहाँ आप ये सौगात लेके जाएंगे अपने साथ, बीच बीच में छोटा सा बुद्धि को पॉज करना अथवा बुद्धि को शांति में परमात्मा को याद करना, किस तरह से योगी जीवन में फायदा होता और योगी जीवन में उसको कहती घर गृहस्थ में रहते, अपने कारोबार को संभालते, परंतु परमात्मा के साथ अपना गहरा संबंध जोड़ के वो अपनी जीवन को जो चलाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर के रहना या सफेद वस्त्र पहनना, परंतु नहीं, जो कारोबार है उसमें परमात्मा के साथ मेरा संबंध योग का जुड़ा हुआ हो। तो आप ये अपने साथ एक आदत डाल के सौगात लेके जाना कि सारा दिन भर बीच बीच में जैसे आपको कन्वीनियंट हो, 3 मिनट 2 मिनट बस, कभी म्यूजिक के आधार पर, कभी आपका जो फोन है उस पर आपको सिग्नल मिल सकता, पीस पॉज, शांति के लिए 2 मिनट रुकना, 3 मिनट रुकना। तो मैं आपको बता रही थी कि कैसे दादी अपना अनुभव बता रही थी कि जब सांप सामने आया तो दादी डरी नहीं, घबरावट में नहीं आई, भागी नहीं, कोई आवाज नहीं किया, बस शांति से उस सांप को भी दादी दृष्टि देती रही। दृष्टि हम किसको कहते? आत्म स्मृति में, परमात्मा की याद में अन्य को देखना, उसको हम कहते हैं दृष्टि। तो परमात्मा की याद में उस शाम को भी दादी दृष्टि देती रही और कुछ समय के बाद वो शांति से अपना रास्ता ले लिया, जहां से वो आया था वहां ही चला गया। तो ये आजकल के मानव की कहानी है, हजारों वर्ष पहले की कहानियां कुछ भी हो, परंतु आज के समय की। क्यों? क्योंकि जबकि हमारी अहिंसक वृत्ति होती तो जो वाइब्रेशंस होते हैं शांति के, अन्य को भी, न सिर्फ मानव परंतु पशु पंछी को भी वो बिल्कुल ही शांत कर देते हैं। तो यदि हम इस प्रकार से अपनी भावना रखते हैं कि मुझे अपने स्वमान में रहना है, परमात्मा की याद के द्वारा शक्ति लेकर के अपने जीवन को चलाना है, तो हमारी जीवन भी स्वस्थ, परंतु साथ ही साथ जो हम कार्य करेंगे उस कार्य द्वारा भी अन्य आत्मा को कुछ प्राप्ति होंगी और स्वस्थ बनने में सहयोग मिलेगा। और फिर आता है हमारा संबंध प्रकृति के साथ। आप सोचो कि आदि समय से लेकर हजारों वर्षों से आज तक प्रकृति ने हमारी किस प्रकार से सेवा की है। वैसे भी कहते हैं धरती माँ है, वैसे भी कहते हैं कि चांद सूर्य आदि देवताएं हैं। तो देवता ऐसे नहीं जो हाथ पांव बांव वाले, परंतु देवता का मतलब ही है देने वाले। तो प्रकृति ने भी हमारी बहुत सेवा करके देती ही रही है, देती ही रही है। जो भी 5 तत्व है वो भी हमें देते रहे हैं, जिस कारण से आज फिर भी हमारी जीवन चल रही है। चांद सूर्य तारे भी हमें देते ही रहते हैं, कुछ हमसे लेते नहीं है। अब सोचो जब कोविड का समय था, एक भाई की कहानी मैंने सुनी थी। वो था सैंटेंडर बैंक का ओनर स्पेन में। तो उसकी बेटी ने, जब उसके बाप ने शरीर छोड़ा, उसकी बेटी ने बताया कि लास्ट में बाप का यही कहना था कि भगवान ने हमें स्वच्छ हवा दी थी जिस आधार पर हम जीते रहे, परंतु कभी भी हमने उसको थैंक्स नहीं दिया, ये हमारी हमें कैसे स्वच्छ हवा देकर हमें स्वस्थ बना के रखा है। और आज मेरे पास कितना भी धन है परंतु मेरे पास वो ताकत नहीं है जो मैं हवा को अपने ऑक्सीजन को अंदर ले सकूं और उसका मैं फायदा उठा सकूं। तो आप सोचो कि प्रकृति ने नेचर ने हमें क्या नहीं दिया है, चाहे जल हो, चाहे सूर्य की शक्ति हो, चाहे वो धरती की ताकत हो, जिस आधार पर फल फूल आदि आदि हमें मिलता रहा, हम चलते रहे। और मानव ने क्या किया, हम लेते गए लेते गए लेते गए, परंतु न सिर्फ लेते गए परंतु साथ ही साथ हम डिस्ट्रॉय करते गए, हम पलूट करते गए। वैसे तो हम कहेंगे मनुष्य आत्मा की वो आत्मा है जो इतनी ऊंची है, जो परमात्मा को याद कर सकती, परमात्मा को जान सकती, परमात्मा के साथ संबंध रख सकती, परंतु कहेंगे कि कलयुग की अंतिम घड़ियों में मनुष्य आत्मा की वो स्थिति है जो अपने घर को ही बिगाड़ दिया। नो अदर स्पीशीज स्पॉयल्स इट्स ओन होम। हर एक जानवर जो है अपने घर को बहुत सुंदर बना करके, कैसे भी उसका घर होता, वहां पर घर बना करके उसको स्वच्छ बना कर रखता, और मानव ने तो कुछ और ही कर दिया। परंतु जब हमें कर्म फिलॉसफी की बातें याद आती तो हमें ये याद आता कि अहिंसक वृत्ति रखना मुख्य धर्म है, अहिंसक बनना प्रथम धर्म है मानव का। तो जबकि हम अहिंसा को मान करके जान करके उस अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, तो जिसको हम कहेंगे कार्बन फुटप्रिंट, वो भी हमारा रिड्यूस होता, हमारी लाइफ में सिंप्लिसिटी आती, और साथ ही साथ हम प्रकृति को जिससे हम इतना लेते रहे हैं, अभी हम कुछ उसका देने का सोच सकते। प्रकृति को हम क्या दे सकते, हाँ हम उसको स्वच्छ बनाकर रख सकते, परंतु साथ ही साथ परमात्मा के दिए हुए शांति के किरणें, प्यार की किरणें, सत्यता के किरणें, वो हम प्रकृति को दे सकते। जब हम योग करते हैं, एक तो हम योग करते हैं खुद के लिए, मुझ आत्मा को पावन बनने की शक्ति मिले, जीवन का परिवर्तन हो सके, परंतु साथ ही साथ हम योग लगाते हैं कि विश्व की सब आत्माओं को शांति मिले, हर आत्मा परमात्मा के समीप आए। परंतु साथ ही साथ हम योग लगाते हैं ताकि हर पशु पंछी जो भी जीव जंतु है उन्हों को भी वो परमात्मा की रक्षा होती रहे। और फिर हम योग लगाते हैं कि प्रकृति अथवा पांच तत्व भी फिर से पावन बने। तो जो हमने प्रकृति से लिया हुआ है अब बस थोड़े से ही देने के लिए हम संकल्प रखें, शुद्ध वाइब्रेशंस प्रकृति को देवे, पांच तत्वों को देवे, तो प्रकृति भी जो आज बहुत ही हलचल में आ गई है, तत्व भी जैसे कि गर्म हो गए हैं, तो उसको भी हम शांति की शक्ति दे सकते, शांति का दान दे सकते, उन्हों को भी फिर से पावन बना सकते, ताकि उन्हों का भी परिवर्तन हो करके हर प्रकार से मनुष्य आत्मा का स्वस्थ, मनुष्य आत्मा के संबंध आपस में स्वस्थ, और फिर हर प्रकार के प्राणी के लिए भी स्वस्थ संबंध, और प्रकृति के लिए भी नेचर के साथ भी हमारा स्वस्थ संबंध हो। तो आप सोचो कि सचमुच ये प्लैनेट जो है, और जो भी कोई प्लैनेट पर है अभी, वो सब स्वस्थ बने ताकि फिर सत्युग जल्दी में जल्दी आ सके। मुझे लगता है कि यदि इस कॉन्फ्रेंस में आने से, समिट पर आने से, यदि आप कोई भी बात जो भी सुने, जो भी अच्छी लगे, छोटी सी बात हो, बड़ी बात हो, जिसका आप संकल्प करेंगे कि ये मुझे अपने जीवन में धारण करके जाना है, तो संसार का परिवर्तन कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मार्गरेट मीड सोशल साइंटिस्ट ने बहुत समय पहले कहा था कि जब भी समाज में कुछ अच्छी बात का परिवर्तन हुआ है, वो मेजॉरिटी ने नहीं किया है, कुछ छोटे से कमिटेड इंडिविजुअल्स, वो जब आपस में संगठन बना करके कोई भी बात को उठाते हैं, तो उनों के शक्ति द्वारा कुछ भी अच्छा कार्य शुरू होता तो उसमें मोमेंटम आती जाती, वो कार्य बहुत अच्छी तरह से कई बातों का परिवर्तन ला सकता। तो यहाँ मैं देखती हूँ कि कई आत्माएं आई है जिन्हों के अंदर वो भावना है कि हम अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएं, विश्व में भी हम कुछ सहयोग दे करके विश्व को श्रेष्ठ बनाएं, तो वो संभव बात हो सकती। अभी हम 3 मिनट उस परमात्मा की याद में बैठते हैं। अभी म्यूजिक नहीं चलेगा, परंतु बस मैं थोड़ी सी कॉमेंट्री करेंगे, उस अनुसार आप भी अपने संकल्प को चलाना। शांति में बैठते जो बातें सुनी है उसका मनन चिंतन चलता, और अब पहली बात को सोचते कि मैं कौन हूं। ये बात सुनी है कि हम आत्मा है, परंतु अभी जैसे ही उस बात पर गहराई से विचार करते कि मैं हूं ज्योति स्वरूप, बिंदु स्वरूप, प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा, मैं हूं आत्मा, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सत्य स्वरूप। ये मेरे निजी संस्कार है। इस स्थिति में परमपिता परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप निराकारी सामने आते और आत्मा का उस प्यारे परमपिता के साथ संबंध हमारा जुड़ता। परमात्मा सर्व गुणों का सागर, उस सागर द्वारा सर्व प्रकार की प्राप्ति। जो आत्मा को आवश्यकता है परमात्मा द्वारा, वो हमें प्राप्त होता। शांति, शक्ति, प्रेम, मैं आत्मा को अपने में धारण करती, वही हमारे आदि संस्कार फिर से प्रकट होते। सागर के द्वारा जो लहरें उत्पन्न होती, विश्व भर में फैलती जा रही और विश्व का परिवर्तन करती। ओम शांति। हम इसी शांति को बनाए रखेंगे, कुछ पल इसी स्मृति में रहेंगे जो हमें दिशा मिली है आदरणीय दीदी जी के द्वारा।